ಸಮಜ್ಜಾನತ್ ಮಿರಂಭಶ್ಚ ಜಾನಂಜನ ಕಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರು ಮಿಲಿತಂ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಜನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಪದಾಮಯ್ಯಂ ದದಾತಿಸ್ತೋಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶಂ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಹಸ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾಧ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಂ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ವಂಶಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯಶ್ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಃಂ ವಿಷ್ಣುಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಕಾಮಿನೇ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೇ ಸಾರಸ್ವತೀ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣೀ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾ ಶೂನ್ಯವಾದೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಕೃತಕಾರಿಣೇ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಿಯ ಚೈತ ಸದಾಧ ಶಿವ ಶಾಂತಿ ಗೌರವ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತಂ ನರಂತೆ ವನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತಜಯ ಮುದಿರೇ ಮುಖಂ ಪ್ರತಿಭಾಸನಂ ಪಂಗುಲಂ ಮಹೇಶ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಶ್ರೀಗುರುದಿನಕರ್ಣಂ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯೈಶ್ವರಂ ನಮಃಂ ವಿಷ್ಣುಪದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಪತಾಕ ಸಮಯ. ತೋ ಮೇ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕರುಂಗಾ, ಮೇರಾ ಹಿಂದಿ ಇತನಾ ಶುದ್ಧ ನಹೀಂ ಹೋಗಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಸಮಝ ಪಾಯೆಂಗೆ, ಇತನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಹೀಂ ಹೋಗಾ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಮೇ ಆಪ್ ಲೋಗೋಂಕೋ ಸಿದ್ಧಾ ಮಾಯಾಪುರ ಮೇ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಆಪ್ ಲೋಗ ಇಧರ್ ಆಯೇ ಹುಯೇ, ಆಪ್ ಲೋಗೋನೆ ಕಿತನಾ ಭಕ್ತ ಪಹಲಾ ಬಾರ ಮಾಯಾಪುರ ಆಯೇ ಹಾತ್ ಉಠಾಯೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೇ ಮಾಯಾಪುರ ಕೋ ಹಮಾರೆ ಇಸ್ಕನ್ ಕಾ ವಾಲ್ ಹಿಟ್ ಪರ್ ಹೈ. ಆಪ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೇ ಬತಾಯಾ ಕಿ ಮಾಯಾಪುರ ಬಾಂಬೆ ಉನ್ಕಾ ಆಫೀಸ್ ಹೈ, ವೃಂದಾವನ್ ಉನ್ಕಾ ಮಕಾನ್ ಹೈ, ರಹನೆ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಹೈ, ಔರ್ ಮಾಯಾಪುರ ಉಪಾಸನಾಲಯ ಉಪಾಸನಾ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಹೈ. ತೋ ಜಿತನಾ ಶರೀರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಾ ಅನುಗಮನ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಮಹಾಪುರ ಕಾ ಅನುಗಮನ ಹೋತಾ ಹೈ, ಮಾಯಾಪುರ ಹಮ ಲೋಗ ಕೇ ಬಹುತ್ ಗುರುತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಹೋತಾ ಹೈ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೋತಾ ಹೈ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಕಾ ವರ್ಣನಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ, ಜಿತನಾ ಕಲಿಯುಗ ಬಢ್ತೆ ರಹೇಂಗೆ ತೋ ದೂಸರಾ ಧಾಮ ಕಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಗುಪ್ತ ಹೋ ಜಾಯೇಂಗೆ, ಲುಪ್ತ ನಹೀಂ ಹೋಂಗೆ, ಖತಮ್ ನಹೀಂ ಹೋ ಜಾಯೇಂಗೆ, ಲೇಕಿನ್ ಗುಪ್ತ ಹೋ ಜಾಯೇಂಗೆ, ಛಿಪ್ ಜಾಯೇಂಗೆ. ಔರ್ ಕಲಿಯುಗ ಜಿತನಾ ಬಢ್ತೆ ರಹೇಗಾ, ನವದ್ವೀಪ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮ ಕಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಉತನಾ ಜ್ಯಾದಾ ಬಢ್ತೆ ರಹೇಗಾ. ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವ ಅಗೋಚರ ವೇದ ಗುಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ. ನವದ್ವೀಪ ಧಾಮ ಕಾ ಮಹತ್ವ ವೇದ ಮೇಲೆ ಬಹುತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗುಪ್ತ ಭಾವ ವರ್ಣನಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ. ದೇವತಾಂಕ ಮಾಯಾಪುರ ಕಾ ನವದ್ವೀಪ ಧಾಮ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಮೇ ಮಾಲೂಮ ನಹೀಂ ಹೋತಾ ಹೈ. ತೋ ಮಹಾತ್ಮ ನೇ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಬತಾಯಾ ಹೈ, ದೇಖೋ ಮಾಯಾಪುರ ನವದ್ವೀಪ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಮೇ ಬಹುತ್ ಜಗಹ ಪರ್ ವರ್ಣನಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ, ಲೇಕಿನ್ ಲೋಕೋ ಕೋ ಮಾಲೂಮ ನಹೀಂ ಥಾ. ಕ್ಯೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಲಿಖಾ ಹೈ ಮುನಿ ರಿಷಿಯೋ ಕೋ ಕ್ಯೋ ಮಾಲೂಮ ನಹೀಂ ಹುವಾ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಭಗವಾನ್ ನೇ ನಿರ್ದೇಶ ದಿಯೆ ಥೆ ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಕೋ, ಜಬ್ ತಕ್ ಮೇ ಇಸ್ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಆಕರ್ ಮೇರಾ ಲೀಲಾ ಕೋ ಸಮಾಪ್ತ ನಹೀಂ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ, ತಬ್ ತಕ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಇಸ್ ಧಾಮ ಕಾ ಮಹಾತ್ಮ ಸಮಝ್ ನಹೀಂ ಲಗಾ. ಹಾಂ, ಯೇ ಕಿತನಾ ಮಹಾನ್ ಹೈ,
तो मेरा आज बांग्ला में हम लोग हर साल नरसिंह आशीर्वाद के लिए दो तीन दिन पहले नरसिंह कथा करते हैं, तो मेरा आज बांग्ला में नरसिंह कथा करना था। फिर हिंदी में जब नवजी महात्म बोले जो मेरे को बोले थे, हम तो बांग्ला में आज से मैं बोले था ना मायापुर भक्त के मायापुर ठाके बांग्ली भक्त रखे मायापुर ठाके और बात है महारसंग बांगाली भक्त करा हर साल सब हिंदी बुझते बार ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं नवद्वीप के बारे में बताऊंगा। हाँ, और नवद्वीप में नृसिंह भगवान का जो लीला है उसके बारे में बताऊंगा। फिर नवद्वीप धाम का प्रकट कैसा हुआ आप लोगों को मालूम है। इस जगत का सृष्टिकर्ता कौन है, कौन जगत का सृष्टिकर्ता होते हैं? ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्मा जी जगत का असली सृष्टिकर्ता नहीं होता है, वो सृष्टि क्या नहीं, वो ऊपर सृष्टि सेकेंडरी क्रिएशन थी। पहला सृष्टि तो भगवान विष्णु ही करते हैं, उनसे खेती ऑफ केज मरुस्तम ब्रह्मांड का जितना उपादान होता है ना मौलिक उपादान, ये भगवान के आते हैं। फिर ब्रह्मा लेकर उसको जोड़ के रूप देते हैं, तो विष्णु ही इसको क्रिएट करते हैं सृष्टि करते हैं। लेकिन ब्रह्मा या विष्णु या शिव इस तीनों ने कोई भी कुछ काम कर नहीं पाएंगे जब तक भगवान कृष्ण ने इच्छा नहीं करेंगे। इसीलिए बोलते हैं तुम्हें सर्वे सरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छा है ईश्वर से जनसंहार, तुम सब ईश्वर का ईश्वर हो, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ हो जाता है। तब इच्छा मत ब्रह्मा करेगा, आपका इच्छा का अनुसार ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं। तब इच्छा मत विष्णु करेगा पालन, आपका इच्छा का अनुसार विष्णु पालन करते हैं। तब इच्छा मत शिव करेगा संहार, तब इच्छा मत माया सृजन करेगा, तुम्हारा इच्छा का अनुसार शिव जी संहार करते हैं और महामाया दुर्गा देवी इस संसार की कारागार को गठन की रचना की। सब भगवान का इच्छा का तरह कृष्ण का इच्छा का बगैर कुछ भी नहीं होता है। ये भौतिक जगत और चिन्मय जगत भी जो कुछ सृष्टि होता है कृष्ण का इच्छा का तरह ही होता है। इस भौतिक जगत में चिन्मय जगत में किधर भी ऐसा एक चीज नहीं इसका प्रकट हुआ सृष्टि हुआ भगवान श्री कृष्ण का इच्छा का बगैर, ऐसा कुछ भी स्थान नहीं। एक स्थान है जिस स्थान का सृष्टि का ऊपर भगवान कृष्ण का कुछ हाथ नहीं है। कृष्ण का इच्छा से इस नवद्वीप धाम सृष्टि नहीं हुआ है। ब्रह्मा का बात छोड़ो विष्णु का बात छोड़ो, ये नवद्वीप धाम प्रकट का पीछे भगवान कृष्ण का कुछ अवदान नहीं है। ये धाम सृष्टि हुआ श्रीमती राधारानी का इच्छा से। चतुर्दश भुवन अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत वैकुंठ जितना है इतना स्पेशल है श्रीमती राधारानी का इच्छा हुई हुआ। उन्होंने चाहते कि मैं कृष्ण को उपासना करूंगी एकांत उपासना करूंगी, ऐसा स्थान होता कितना अच्छा होता था। तो राधारानी का ऐसा इच्छा होने से अभिन्न वृंदावन धाम प्रकटित हुई, ऐसा वृंदावन देखने के लिए उसे बिल्कुल ऐसा है सब कुछ ऐसा था। तो राधारानी को राधारानी से बैठी हुई वृंदावन के माफिक जमुना सरस्वती गोवर्धन राम मंदिर सब कुछ ऐसा ही है। तो राधारानी ने सोचे वृंदावन है सब कुछ तो है इधर, तो कृष्ण तो नहीं इधर है, तो वृंदावन क्या फायदा। देखो कृष्ण हो गए तो वृंदावन नहीं तो कृष्ण का कुछ फायदा नहीं। ब्रजगोपियों ने श्रीमती राधारानी ने कृष्ण को जब कुरुक्षेत्र मिले तो लोग आनंद नहीं हुआ, कृष्ण को प्राप्त हुए लेकिन आनंद नहीं मिला। ना तुम वृंदावन जब वृंदावन में तुमको मिलने चाहते हैं तो वृंदावन का बगैर कृष्ण का लीला का कुछ फायदा नहीं होता है और कृष्ण का बगैर वृंदावन का कुछ फायदा नहीं होता है। तो नवद्वीप धाम सृष्टि हो गया तो फिर कृष्ण तो अभी नहीं है, तो वृंदावन और नवद्वीप में क्या फर्क होता है। वृंदावन में भगवान कृष्ण बांसुरी बजा के राधा रानी और गोपियों का आकर्षण करते हैं। फिर नवद्वीप धाम में राधा रानी बांसुरी बजाकर कृष्ण का आकर्षण करते हैं, ये फर्क होता है। तो कृष्ण नहीं थे, वृंदावन है सब कुछ, कृष्ण नहीं है तो राधा रानी इधर बांसुरी बजा गए, भगवान कृष्ण का आकर्षण कर ले। इसे विपरीत है, कैसा ब्रज में ललिता विशाखा राधा रानी ये जितने लोग सब नारी रूप धारण करके आए थे, तो राधा रानी के मन में बहुत खेद था। तो ग्वाल बालों ने हर समय कृष्ण का भगवान का सानिध्य लाभ करते हैं, संग प्राप्त होता है। गोपियों तो हर समय जा नहीं पाता था कृष्ण के पास। तो राधा रानी ने सोचा तो मेरे को क्यों ये नारी शरीर मिला, मेरे को पुरुष शरीर मिलता था तो मैं हर समय कृष्ण का हाथ रहता था। इसलिए राधा रानी इस नवद्वीप में पुरुष रूप धारण करके प्रकट थे। कौन सा रूप में है राधा रानी? गदाधर रूप में है। गदाधर महत्व में गदाधर हर समय चैतन्य महाप्रभु का नजदीक में रहते थे। ललिता विशाखा ये सब पुरुष रूप धारण करके इधर आए। तो भगवान का अनंत रूप होता है, अनादि अनंत रूपम गोविंदम आदि पुरुषम, अनादिकाल से अनंत रूप में अनंत वैकुंठ धाम में भगवान आत्म प्रकाश किए। भगवान एक में अद्वितीय, एक होने से भी एक बहुत सम अभवत, एक होने से भी बहु रूप धारण किया। एक ऑपिशन बहुजा जो विभाती इस सूची में बताते हैं, परम ब्रह्म एक होने से बहु रूप क्यों अनंत रूप है ना। भगवान का स्वरूप क्या होता है? रस वहिष्ठ, और रस को आस्वादन करते हैं। रस वहिष्ठ परम ब्रह्म रस स्वरूप होते हैं, रस का स्वरूप आस्वादन करते हैं और जीवात्मा का रस आस्वादन कराते हैं, ये परम ब्रह्म का स्वरूप होता है। तो भगवान परम ब्रह्म कितना रस को आस्वादन करेंगे? दो तीन चार हजारों लाखों ऐसा नहीं होता है, अनंत रस अनंत भाव होता है भगवान का। अनंत रस को अनंत रूप में आस्वादन करते हैं। जैसे हम लोग का एक एक शरीर में हम लोग का सब भाव या सब रस को हम लोग आस्वादन करते हैं। कभी हमारा मन में करुणा का भाव आ जाता है, कभी हमारा मन में खूब क्रोध आ जाता है। एक शरीर में हम लोग सब कुछ क्रियाकलाप करते हैं। परम ब्रह्म भगवान का लिए दूसरा है, एक एक भाव को एक एक शरीर में आस्वादन करते हैं। कृष्ण रूप में एक भाव है, राम रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, कृष्ण रूप में लीला पुरुषोत्तम होते हैं, चैतन्य रूप में प्रेम पुरुषोत्तम होते हैं। एक एक शरीर में एक एक रस या भाव को आस्वादन करते हैं। नरसिंह रूप में एक रस को आस्वादन करते हैं, एक एक रूप में एक एक रस को आस्वादन करते हैं। तो भगवान का जो अनंत भाव है इसमें तीन भाव प्रधान होता है, ऐश्वर्य भाव, माधुर्य भाव और औदार्य भाव। एक भगवान भिन्न भिन्न धाम पर भिन्न भिन्न भाव को भाव में लीला विलास करते हैं। फिर भगवान वैकुंठ में द्वारका में ऐश्वर्य भाव का लीला विलास करते हैं। तो भगवान गोलोक वृंदावन में माधुर्य भाव का लीला विलास करते हैं। तो ही भगवान नवद्वीप धाम में औदार्य भाव, उदार, औदार्य का मतलब क्या है ना, उदार, इतना उदार है, इतना करुणामय होता है। भगवान तो हर अवतार में करुणामय ही है, लेकिन एक इस अवतार में जैसा करुणा का प्रभाव प्रकटित किए, दूसरा कोई अवतार में ऐसा करुणा का प्रभाव प्रकटित नहीं किए। तो भगवान कृष्ण कम करुणा था उनका, अरे उतना करुणा भाव था भगवान कृष्ण का। भागवत में बताते हैं अहो बकी एम स्तनकाल कुटम, तो बकी कुतना बकाकुट का बहनी बकी, उस स्तन में कालकुट विष लेपन करके आए थे, आए थे कृष्ण को विष पिला के मार देने के लिए, जब कैसा भाव था। तो उनको कृष्ण इतना करुणामय होते हैं, कृपा में होते हैं, तो उनको उनका मातृपद दे दिए, भगवत में मातृपद मिल गया उनका, तो कितना करुणामय होते हैं। तो हमारा आचार्य लोगों ने बोलते है ना, उनसे कृष्ण स्वरूप में जो भगवान आए, उससे चैतन्य स्वरूप में जो भगवान आए उससे ज्यादा करुणा है। कैसा? अरे पुतना को भगवान श्री कृष्ण उद्धार कर दिए, मातृपद दे दिए, लेकिन किसी को देखा ही नहीं। जब कुछ ना तो भगवान किसे मार डाले, तब तो उनका जो परिवार का लोग थे बहुत खुश हो गए, कृष्णा थैंक यू सो मच, धन्यवाद, तुम पूछना को मार के भगवत हम भाई कोई बोला नहीं, सब रोते थे ना, सब गाली देते थे, कृष्ण इतना बदमाश है, यही चक्कर सब गाली देते थे, सब रोते थे। लेकिन ओ कृष्ण जब चैतन्य रूप में आए, सबको उद्धार कर दिया, उनको किसको मारना नहीं पड़ा। बाकी का तो जब तक खिला हरि नाम है उद्धार लो तार साक्षी जगाई माधाई है, तो जगाई माधाई इसका साक्षी है, इतना पाप किए थे लोग दोनों, यमराज भी विस्मित हो गए, इतना बड़ा पापी को इतना महान फल मिल गया। अरे भगवान तो बहुत सारे अवतार में आते हैं, भगवान का नाम का महिमा तो मालूम है, भगवान का नाम को लेकर जो रचना करता राम राम पुकार के पाप से उद्धार पा जाते हैं, कोई भगवान का नाम को लेके वो मुक्ति प्राप्त हो जाता है, कोई भगवान का नाम को कीर्तन करके ध्रुव महाराज का ओम नमो भगवत वासुदेवाय बोल के छह महीने में भगवान का दर्शन कर ले, कोई भगवान का नाम को लेकर वैकुंठ धाम में जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा पापी तो ब्रह्मा का दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ये महापुरुष का स्वरूप होता है। सब तो बोला के देते ब्रह्मा दुर्लभ वस्तु सभा कर जाते, जो ब्रह्मा शिव को भी प्राप्त करना दुर्लभ होता है उनका कृष्ण प्रेम। अनर्पिता चरित्रा करुणया अवतीर्ण करो समर्पितम उन्नत उज्जवल रसस्य भक्ति श्रियम। तो महाप्रभु आए हुए क्या करने के लिए, न अनर्पित चरित्रा जो वस्तु कभी दिया नहीं गया वो वस्तु देने के लिए आए, इस कलि युग में बहुत कृपा करता है, करुणया अवतीर्ण करो, किसी लिए न समर्पितम लोगों को बिलाने के लिए देने के लिए, उन्नत उज्जवल रसस्य भक्ति श्रियम बहुत श्रेष्ठ उन्नत, तो भक्ति संपद देने के लिए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु आने का और दूसरा भी कारण है। मैं थोड़ा नवद्वीप के बारे में संक्षेप में आप लोगों को कुछ आइडिया धारणा देने की कोशिश करूंगा, इसलिए महाप्रभु क्यों अवतीर्ण हुए उसको मैं चर्चा नहीं करूंगा। हमारे जो नवद्वीप धाम होता है तो गौरव मंडल है, जैसे ब्रज मंडल होता है ना, ऐसा गौरव मंडल, गौरव मंडल भूमि देवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि बास। जब गौरव मंडल भूमि को चिंतामणि धाम करके मानते हैं उनका ब्रजमंडल में बास होता है, तो एक गौरव मंडल भूमि 168 माइल इसका परिधि सर्कमफेरेंस होता है, जिधर जब तक महापुरुष का लीला विलास थी गौरव मंडल भूमि 168 माइल। तो गौरव मंडल भूमि का केंद्र स्थल में ये नवद्वीप मंडल होता है, नवद्वीप मंडल 32 माइल सर्कमफेरेंस परिधि 32 माइल होता है नवद्वीप मंडल, आपको याद रखना है। पहले गौरव मंडल है 168 माइल, इसका केंद्र में नवद्वीप मंडल है 32 माइल। नवद्वीप धाम होता है नवद्वीप का समाहार में नवद्वीप होता है, जैसे ब्रज में द्वादश बल होता है तो बीच में जमुना नदी बहती है, तो एक तरफ पांच बल होता है, पूर्व दिशा में पांच बल होता है और पश्चिम तरफ सात बल होता है, द्वादश बल होता है ब्रज में, उसका नवद्वीप धाम में जो नौ द्वीप होता है, चार द्वीप गंगा के का पश्चिम दिशा में होता है पूर्व दिशा में होता है और पांच द्वीप गंगा नदी का पश्चिम दिशा पर होता है। तो नवद्वीप धाम होता है एक पद्म फूल का वास्तु कमल फूल जैसा ऊंचा होता है, एक कमल फूल का एक पेटल्स होता है और बीच में का कर्णिका होता है केंद्र स्थल में, तो केंद्र स्थल में जो होता है उसको अंतर्द्वीप बोलते हैं। तो महाप्रभु जितना जगह पर लीला किए उसको गौरव मंडल भूमि बोलते हैं। गौरव मंडल का केंद्र में क्या है आप लोग बताएंगे मेरे को, गौरव मंडल का केंद्र में क्या है, नवद्वीप मंडल है, गौरव मंडल का केंद्र में क्या है सबको बोलना पड़ेगा, नवद्वीप मंडल का केंद्र में क्या है अंतर्द्वीप है। तो अंतर्द्वीप जो नाम हुआ मैं बाद में बताऊंगा, तो अंतर्द्वीप का केंद्र में इधर मायापुर है, मायापुर धाम होता है। ये मायापुर धाम क्यों नाम दिया गया? ये माया देवी का क्या नाम काम है इधर? तो मायापुर में माया देवी का ये काम है, जो पाखंड लोग आएंगे, वैष्णव अपराधी लोग आएंगे, उन लोगों को समझ नहीं देंगे कि मायापुर ग्लोरी को उसको ढक के रखेंगे। देयर इज अ मोर केयर हियर इन फ्रंट एवरीथिंग, इट कैन नेवर कम सिक, इट कैन नेवर हियर आल्सो। इधर सामने में कुछ चेयर फंका हुए, अब लोग आना है तो हम बैठ पाते हैं इधर। तो हाँ, ये मायापुर धाम है। तो मायापुर धाम के केंद्र में योग पीठ होता है। तो महापुर का जितना लीला स्थान 106 माइल, क्या बोलते हैं जस्ट बोलिए, क्या बोलते हैं? गौर मंडल भूमि। गौर मंडल का केंद्र में क्या है? नवद्वीप मंडल। नवद्वीप मंडल का केंद्र में क्या है? अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप का केंद्र में क्या है? मायापुर। मायापुर 3 माइल होता है। मायापुर 3 माइल। मायापुर का केंद्र में क्या होता है? योगपीठ। क्या? योगपीठ। क्यों योगपीठ? जिधर भगवान चैतन्य महाप्रभु तीनों धाम से आके इस धरती पर युक्त होता है तो योगपीठ बोलता है, संबंधित होता है तो योगपीठ बोलता है। ऐसा अंतर्द्वीप का केंद्र होता है मायापुर, मायापुर का केंद्र योगपीठ। योगपीठ का केंद्र में कौन है, क्या है? महाप्रभु है। योगपीठ का केंद्र है चैतन्य महाप्रभु होता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई होता है। निमाई आप लोग जाएंगे योगपीठ में, गए गए जाएंगे दर्शन करेंगे। नीम पेड़ है, और नीम पेड़ का नीचे चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ था, इसीलिए तो गांव का जो औरत लोग होते हैं उनको निमाई करके बोलते है। और एक कारण शास्त्र बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु जन्म होने से पहले सरस्वती माता का बहुत सारे बच्ची होते थे, मर जाते थे, यमराज जाके ले जाता था। तो गांव लोगों ने सोचे कि यमराज तो बच्चा को ले जाता है तो इसका नाम निमाई नीम देंगे। नीम, नीम क्या होता है? शेष कैसा होता है? कौड़ा होता है ना, तो कौड़ा होने के कारण यमराज उसको नहीं लेगा, तो रख के जाएगा। इसीलिए गाँव का जो औरत लोग होते हैं निमाई नाम रखो, तो यमराज कौड़ा होने के कारण उसको लेके नहीं जाएगा। उन लोगों को मालूम नहीं यमराज क्या करे, तो यमराज का जमराज है। यम का यम है, काल का काम है, लेकिन वो तो प्रेम भाव से लोग ऐसा सोचते हैं। ये आपको याद रखना है, गौर मंडल भूमि का केंद्र में नवद्वीप, नवद्वीप का केंद्र में अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीप का केंद्र में मायापुर, मायापुर का केंद्र में योगपीठ, उधर चैतन्य महाप्रभु आरंभ। तो मैं अभी संक्षेप में आप लोग को नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराऊंगा। तो इसीलिए आप लोग जब वापस जाएंगे तो नवद्वीप का नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अब जो लोग दर्शन करेंगे ना कि नवद्वीप धाम इतना पवित्र महान होता है, आप लोग फिर बाद में आ नहीं पाएंगे। हर लोग घर में बैठ के नवद्वीप धाम का नाम का स्मरण करेंगे तब तो नवद्वीप धाम मंडल परिक्रमा का फल मिलेगा। तो केंद्र में एक गंगा का पूर्व दिशा में 4 आइलैंड होता है, पश्चिम दिशा में 5 आइलैंड होता है। तो केंद्र में ये अंतर्द्वीप है, एक नवद्वीप होता है, एक नवद्वीप का भक्ति होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ऐसा होता है ना। एक एक द्वीप में भगवान ने जो लीला की, तो एक एक भक्ति का अंग को इसको रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करता है। ये अंतर्द्वीप है आत्मसमर्पण का, ये अंतर्द्वीप होता है। तो अंतर्द्वीप का नाम क्या हुआ, क्यों हुआ, हर द्वीप का नाम क्यों ऐसा हुआ, मैं बहुत कुछ संक्षेप में बताऊंगा। तो अंतर्द्वीप में ब्रह्मा जी आकर तपस्या किए थे। आप लोगों को मालूम कैसा, ब्रह्मा भी उनको विश्वास नहीं हुआ कृष्ण भगवान है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, आजकल लोगों ने कृष्ण को भगवान करके मानते नहीं, इसमें से आश्चर्य होने का कुछ नहीं। अरे ब्रह्मा भी तो कृष्ण को भगवान करके नहीं मानते, इंद्र भी, उनको भी मालूम हुआ नहीं कि कृष्ण भगवान है। भगवान कृष्ण हर रोज गोचरण में जाते हैं ग्वाल बालों को लेकर। तो हर रोज क्या होता है ना, कंस एक असुर भेजता है, तो असुर को भगवान कृष्ण मार डालते हैं। तो एक महाराज ने बताते हैं, तो आपका घर ही नहीं था, तो कब खाने का टाइम होगा, तो कृष्ण ग्वाल बालों को जाते थे, खेला करते थे, खेलते थे, तो भूल जाते थे खाने के लिए। तो कोई असुर आएगा उसको मार डालेंगे, तब मन याद रहो अभी हम खाने पड़ेगा। कौन सा हर तीन असुर रहता था, सुबह एक दोपहर का एक काम करे, तो इसे जाके घर बस्तर को छोड़ के जमीन पर वो लोग खेलते थे भूल जाते खाने के लिए। तो असुर आएगा तो मार डालेंगे, अभी खाने का टाइम आ गया। फिर खाने के बाद फिर खेलते रहेंगे, भूल जाएंगे घर वापस जाने के लिए, फिर एक असुर आएगा तो उसको मारेंगे, और अभी वापस घर जाने वगैरह। सही भगवान कृष्ण अघासुर को मार डाले, अघासुर को मार डाले, सब देवता लोग आए अंतरिक्ष में आके दिन दिन बजाने लगे, पुष्प वृक्ष के हो जय भगवान कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जय हो। तो अघासुर को मार डालने के बाद सब देवता लोग तो घर में चले गए। फिर ब्रह्मा जी गए वो बैठे थे देखने के क्या होता है इसके बाद। तो ब्रह्मा जी ने देखा कृष्ण सब ग्वाल बालों को लेके, ग्वाल बालों ने सब घर से उसका टिफिन करेगा खाना ले आए थे, तो सब लोग बैठ खाते हैं भोजन खाली है, अब लोग दस में जाएंगे दिन भर भोजन खाली बैठेंगे। सब लोग खाते थे, जब कुछ खाना अच्छा लगता था कोई ग्वाल बालों को तो खाते है, जो झूठा होता है वो खाना है खाने बहुत टेस्टी है, तुम खाओ तुम खाओ, तो मुँह में देते थे। तो ब्रह्मा उधर बड़ी देखते हैं, अरे ये कैसा बात है, ब्रह्मा तो वेद जो होता है ना, मैं तो वेद में ऐसा देखा नहीं है। कल परमात्मा भगवान तो झूठा खिला जाए, परमात्मा भगवान को खिला खिलाने के लिए शुद्ध होने पड़ेगा, परिष्कार परिचन करना पड़ेगा, ब्राह्मण होने पड़ेगा, एक नाक को टिपने पड़ेगा, इस पर टिपने पड़ेगा, सत्र सब भगवान खाते हैं, मन से बात करते हैं, अरे ये भगवान झूठा खाता है, ये भगवान नहीं है। सब दोस्तों को बल्ला करके मीटिंग किया, अरे ये भगवान नहीं है, भगवान ब्रह्मा ही बोल रहे हैं, और आपका शिष्य भगवान के मानते नहीं, मूल व्यक्ति से आपसे कहना क्या बात है, कुछ भी नहीं। केवल परम ब्रह्मा का एक लक्षण होता है, उज्जैन की जगत रहेगा, साधारण मनुष्य मोहित हो जाएंगे, बड़ा बड़ा मुनि ऋषि देवता भी मोहित हो जाएंगे, ये भगवान परम ब्रह्मा का स्वरूप होता है, ये लक्षण होता है, देवता लोग मोहित हो जाएंगे। तो मोहित होने के बाद फिर आप लोग लीला मालूम है, मैं नहीं बताऊंगा, ब्रह्म विमोहन लीला कैसा, कृष्ण गोचाल जाके वो बक्सर को लेकर छिपा कर रख दिया, फिर मालूम हुआ कृष्ण भगवान है। तब आके दोस्तों क्षमा मांगा, मेरे को मेरा दोस्त अपराध हो गया, क्षमा दीजिए। तो भगवान कृष्ण क्षमा कर दिए, लेकिन उनका अंतर में उनको थोड़ा खेद आ गया, क्यों वो मैं समझ गए मैं बहुत बड़ा पोजिशन में हूँ, तो पोजिशन मेरे लिए काल है, ये बड़ा पोजीशन में हूँ, फिर भी कभी ऐसा मेरा आदत आ जाएगा, तो कैसा क्या करूँ। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने इधर आए नवदीप धाम, ये अंतर्दिन में आतापुर के कर्ते के स्थान था, वो आतापुर में बड़े तपस्या करने लगे, गौरांग का ध्यान दिए, गौरांग गौरांग का नाम कीर्तन किए, चैतन चैतन मास से आकर आदित्य प्रयोग के सामने ब्रह्मा जी का सामने आदित्य तो ब्रह्मा जी प्रणाम किए। तो चैतन मास में पता है तुम क्या चाहिए क्या बात चाहिए, तो ब्रह्मा ने मतलब देखो तुम आप मेरे को बड़ा पोजीशन दिए, इसलिए मेरे मन में अहंकार आ जाता है, तो मेरे को एक जन्म दे दीजिए जो मैं अस्पृश्य एकदम नीच जात में जन्म हूँ, तुम्हारे साथ दलित भाव आएगा। तो महापुर ने बताया ठीक है, तुम कलयुग में जवनपुर में जन्म होंगे, तुम्हारा नाम हरिदास रहेगा, लेकिन तुम नामाचार्य बनेंगे, 3 लाख नाम जप करेंगे, ऐसा बताया था। फिर इसको बताने के बाद महापुर ने बताया मैं तुमको भी मेरा अंतर का बात बताऊंगा, एक अंतर का बात, अंतर को अंत हृदय को प्रकाश करूंगा, तो क्या है, तो मैं कलयुग को मैं भी आविर्भूत हूँगा, आविर्भूत होकर सब लोगों को तुम्हारे लिए भी जो दुर्लभ है जो कृष्ण प्रेम सबको मैं दिलाऊंगा। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का सम्मुख में आविर्भूत होकर ये अंतर का भाव प्रकाश किए थे, ये अंतर से जो भाव प्रकाश किए थे, इसलिए इस द्वीप का नाम अंतर द्वीप होता है। क्या नाम है, ये पहला नंबर द्वीप का नाम अंतर द्वीप होता है, आत्मनिवेदन अंतर द्वीप। फिर आप लोग जाएंगे हमारा जगन्नाथ मंदिर जो है वो श्रीमंत द्वीप है। मैं संक्षेप में बताता हूँ, एक बार कैलाश में भगवान शिव जी गौरांग नाम करके बहुत नाचते थे, गाते थे, नागू आनंद होते थे। तो बाद में जी पार्वती ने पूछा रहे मैं तो तुमको देखा तुम बहुत तुम भगवान का नाम करके आनंद करते हो, इतना आनंद में कभी नहीं देखा तुमने। अरे गौरंग गौरा कौन है गौरंग जिसको नाम तो सुन इतना नाम आता है। तो मेरे को इस गौरंग प्रेम कृपा चाहिए कैसे मेरे प्राप्त होगा। सचिव जी बताया तुम जाओ नवदीप धाम उधर तपस्या करो तो गौरंग कृपा तुमको मिलेगा। तो पार्वती देवी आके उसी आइलैंड द्वीप में तपस्या करते थे। तो तपस्या करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृपा करके फिर एक दिन उनके समय आविर्भूत हुए। तो महाप्रभु बहुत लंबा थे उनका सुंदर रूप देख के दुर्गा देवी पार्वती देवी खूब खुश होकर महाप्रभु का चरण कमल में हाँ प्रणाम की। प्रणाम करके उनको चरण का रेखी झूला लेकर इसको सिंची बोलते हैं। देखो बंगाल का जो औरत लोग होते हैं रेड पाउडर लाल पाउडर लगाते हैं इधर ना इसको सिंची और सीमंत बोलते हैं। तो माँ पार्वती देवी वो रेती लेकर सीमंत में लगाए थे इसलिए वो आइलैंड का नाम सीमंत द्वीप हुआ। तो भगवान जब माँ पार्वती रोने लगी तो भगवान उसने बोलते हो तो मैं आगे तुमको खुश होना चाहिए। तो पार्वती माता मत देखो मैं तो महामाया हूँ शास्त्र ने बताया कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहाँ माया तहाँ है जहाँ कृष्ण तहाँ है माया अधिकार। तुम सूर्य का माफी कहो मैं तो अंधकार हूँ तो तुम जिधर हो मैं तो रहा नहीं जाऊंगा। अभी तुम आएंगे सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा मेरे को कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु ने तुम फिर महाप्रभु बहुत खेलों से बताए तुम महामाया है तुम ही योग माया रूप में मेरे को वृंदावन में सेवा करता हूँ मैं तुमको विशेष सेवा इधर देता हूँ। तो विशेष सेवा दुर्गा देवी को इस नवदीप धाम पर मिला। ऐसा माता पार्वती देवी इस आइलैंड में चैतन्य महापुरुष का चरण का रीति लगे उनके श्रीमंत में लगाए थे इसलिए वो आइलैंड का नाम श्रीमंत द्वीप। पहला द्वीप का नाम क्या है जो आपको बनना पड़ेगा। द्वितीय द्वीप का नाम क्या है तो श्रीमंत द्वीप और अंतर्द्वीप ये जैसा गंगा बहती है ना वैसा दक्षिण दिशा में सरस्वती नदी भी है। नौ द्वीप इधर हुआ बहुत नदी इंटरेक्शन अभी दो नदी दिखाया जाता है दूसरा दिखाया नहीं जाता है लेकिन रिवर बेड अभी भी है अलकानंदा मंदाकिनी गोमती सब नदी परिक्रमा जब हम लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा आता है गौर पूर्णिमा का पहले हम लोग पैदल में पदयात्रा में छह रात तक आइलैंड में रहते हैं उधर। लास्ट ईयर हम लोग का 6000 भक्त आए थे इंग्राजी भाषा में बांग्ला भाषा में रशियन भाषा में हिंदी भाषा में भी होता है। आप लोग आएंगे तो पूरा धाम कर परिक्रमा कर पाएंगे इस साल हम लोग का होगा। तो सरस्वती नदी का उस पर दो आइलैंड होता है गोद्रुम द्वीप होता है गोद्रुम द्वीप। तो गोद्रुम द्वीप में फिर गोकम गाय होता है तो सूरज गाय उधर आए थे जैसा ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को भगवान समझ नहीं पाए इंद्र का भी ऐसा हालत हुआ था इंद्र भी समझ नहीं पाया। जब गोवर्धन पूजा का बहुत बारिश किया तो बाद में इंद्र को मालूम हुआ इंद्र व्यवस्था में तो अच्छा बारिश सब ब्रह्मवासी नष्ट हो गए। तो इंद्र भगवान उधर से वायु देवता को भेजा तुम जाके देखा सब ब्रह्मवासी मर गए। तो वायु देवता आके देखा ये कृष्ण गोवर्धन को पकड़े है आज सब ब्रजवासियों में अंदर में बैठ के आखिर स्थिति ही करते उसे बैठे हैं। तो भला इंद्र का क्या रास्ता है उसको बहुत आराम से रहता है खाना पीना बहुत अच्छा चलता है सर फिर इंद्र कैसा हो सकता है। हम देखा वो छोटा बच्चा कृष्ण वो बाहर को पकड़ा इंद्र को विश्वास हुआ नहीं इंद्र कैसा हो सकता है छोटा बच्चा सबसे लाइटनिंग को पहन देगा विद्युत को तुम जाकर देखा। तो विद्युत आकर देखा ये सही बात है वो पहाड़ को पकड़ा है वो बोला इंद्र बोला ना ऐसा नहीं हो सकता है। तो इंद्र क्या बोलता है देखो पहले जमाना में एक पहाड़ का तो पंख था एक पहाड़ सब आकाश में उड़ते थे कभी गांव में बल जाते थे लोग मर जाते थे इसलिए मैं वज्र देकर उनको पंख को काट दिया उसे पहाड़ बच गए। मेरे को लगता है ये पहाड़ का छोटा सा एक पंख निकला इसलिए पहाड़ ऊपर उठ गया उठता है ये किसी उठाता नहीं विशेष इंद्र भी सब करते हैं और हम लोग फिजिक्स जो करते हैं वो लोग कैसे बिजलता है इंद्र भी साथ क्या ठीक वो तो कॉन्फ्रेंस देखा है सही बात है। तो डर गया किसी का कल अपराध हो गया तो ब्रह्मा का पास बोला ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी रक्षा करो रक्षा करो, न क्या हुआ सर बताया? ऐसा मेरा किसी का तरह का अपराध हो गया, मैं बहुत बारिश किया था, तो आप थोड़ा मेरे साथ चले, किसी को मेरे पक्ष हो गया कुछ बताए मेरा अपराध क्षमा करने के लिए। सर ब्रह्मा ने कहा है तुम कौन जाना मेरा नहीं, तुम उधर गए थे और तुम मेरे को बोला था मैं जाऊंगा, अरे मेरे को ऐसा हालत था, मेरा मुंह इतना सारा, मैं उधर नहीं जा पा रहा हूँ, तुम जाओ खुश होता है सूर्य का संतुष्ट उनके साथ में लगेगा। फिर इंद्र सूर्य को संतुष्ट करके साथ में ले आया और भगवान कृष्ण गोवर्धन गिर गोवर्धन स्थापन करके सब ब्रजवासियों को बोले तुम घर चले जाओ मैं बाद में जाऊंगा। कृष्ण को मालूम है बाद में क्या होगा ना, एक आया और एक जाना था, कृष्ण बैठा रहा है गोवर्धन में, इंद्र सूर्य की गाड़ी से लेकर आया तो सूर्य भी आपके सामने इतना डरते हैं और शरण आ गया, गाड़ी के सामने रख के उसका पुष्ट पकड़ा है और मुंह को ऐसा करके करके पीछे भी जाते हैं, आके भगवान के पास आके उनका जो मुकुट होता है सिर पर रखा है, तुम्हारा अपराध क्षमा कर दीजिए। तो भगवान बोले ठीक है तुम्हारा अपराध क्षमा हो गया, लेकिन इंद्र का मन में मन कैसा होता है तो तुम जब फिर आएंगे फिर तो मैं तुम्हारा कर अपराध करूंगा, किस तरह की जगह मतलब तुम चलो मेरे मन के अपराध को निकालने के लिए एक जगह पर तुम ले जाऊंगा। तो सूर्य गाधी ने इस बोधरूम डिप्रेस कर रहे थे, उधर आप लोग जाएंगे सूर्य कुंज दर्शन करेंगे, उधर बैठ के इंद्र तपस्या किए थे भगवान के दर्शन किए। इस सूर्य का उधर रहते हैं एक बहुत बड़ा पेड़ है द्रुम, द्रुम का मतलब पेड़ है, पेड़ के नीचे रहते थे, जब प्रलय हुआ प्रलय का पानी है तो जो होता है क्या मार्कंडेय ऋषि वो 7 साल पर जिंदा रहेंगे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुए थे, तो सब लोग मर गए ये बिचारा नहीं मरते हैं जगह में नहीं रहने के लिए नहीं, सब तो पानी हो गया बाढ़ आ गया तो पानी में तरकर कर इधर आए थे, तो सूर्य गाभी उनको उठाकर उनको दूध पिलाए थे। तो पेट का नीचे एक गाभी थे इसलिए इस आइलैंड को गोद्रुम द्वीप बोलते हैं, कौन सा द्वीप नाम क्या है, तो पहला द्वीप का नाम क्या है, दूसरा द्वीप का नाम क्या है, तीसरा द्वीप का नाम क्या है, चौथा द्वीप मध्यम द्वीप, मध्यम द्वीप। तो सप्तऋषि होता है ना अत्रि मरीचि अंगिरा पुला पुलस्त वशिष्ठ, तो ब्रह्मा जी को पूछे पिताजी जीवन में परम सिद्धि क्या है, ब्रह्मा जी ने बताया कृष्ण प्रेम परम सिद्धि हो, तो कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा से प्राप्त हो सकता है, चैतन्य महाप्रभु कृपा कैसा मिलेगा तो नवद्वीप धाम जाओ गौर भजन करो, तो इसी आइलैंड में इस सप्तऋषियों में आके गौरांग महाप्रभु का भजन करते थे, गौरांग गुणगान करते थे, नाम कीर्तन करते थे, तो महाप्रभु ने एक दिन मध्यान्ह समय में आवेदन कर दिया, मध्यान्ह समय में आवेदन, इसीलिए इस आइलैंड का नाम मध्यान्ह द्वीप मिड डे, मध्यान्ह समय में अद्भुत हुए। और एक कारण है मध्यान्ह समय का सूरज जैसा तेजियन होता है इफर्जन चैतन्य महाप्रभु का उषा खूब उज्ज्वल ज्योति था ज्योतिर्मय थे, ये दो कारण मध्यान्ह समय में अद्भुत हुए इसीलिए इस आइलैंड का नाम क्या है मध्यम द्वीप। पहला आइलैंड का नाम क्या है, दूसरा आइलैंड का नाम क्या है, तीसरा आइलैंड का नाम क्या है, आप बोलते ना एकदम बोलता है ध्यान रखता है, पहला आइलैंड में सब बोले जो है, पहला आइलैंड का नाम क्या है, दूसरा आइलैंड का नाम क्या है, तीसरा आइलैंड का नाम क्या है, चौथा आइलैंड का नाम क्या है, मेरे को मालूम है एक बार बोलने से याद नहीं रहेगा, जो लोग पहले से सुने वो लोग बोल देते हैं, तो आप लोग 3-4 दिन से बिताएंगे ना तो आपस में जाएंगे दर्शन करेंगे तो याद करने की कोशिश करेंगे। तो नवद्वीप नदी का उत्पार होता है कोल्लर द्वीप, एक ब्राह्मण है वो बड़हा द्वीप का भक्त है, बड़हा भगवान का नाम कोल्ल होता है, तो एक बार उनका भक्ति से संतुष्ट हो गए बड़हा द्वीप आविर्भूत हुए थे और उसको बोले कि नवद्वीप धाम मेरा प्रिय धाम होता है, मैं कलयुग में इधर आऊंगा चैतन्य रूप में, तुम भी इस समय इधर आए इधर आए। तो भगवान बराह भगवान कोल्ल रूप बराह रूप में आविर्भूत हुए थे इसीलिए कोल्ल द्वीप है। नवद्वीप धाम में सब भगवान आए, जब कृष्ण भगवान आए, रामचंद्र आए, नरसिंह भगवान आए, जितना भगवान का अवतार है ना, सब नवनीत धर्म में लीला विलास करते हैं। जितना देवता है, शिव, पार्वती, इंद्र, हाँ, जितना ऋषि होता है, सप्तऋषि, जितना आचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, शंकराचार्य ने, सब नवदीप धर्म है। इस धर्म का ही महत्व होता है। फिर कोलद्वीप, हाँ, कोलद्वीप के बाद ऋषुद्वीप होता है। ऋषुद्वीप में सारा जितना ऋषु होता है, ऋषु सीजन, वो लोग बच्चा मीटिंग करते थे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कब आएंगे, तब बसंत ऋतु में आए, ऋतु राज, इसीलिए बसंत ऋतु राज बोलते हैं, राजा है, ऋतु में राजा है, इसी ऋतु में चैतन्य महाप्रभु आए हुए, तो ऋतु द्वीप बोलते हैं। पहला द्वीप का नाम क्या है? ज्योत। दूसरा द्वीप का नाम क्या है? तीसरा द्वीप का नाम क्या है? चौथा द्वीप का नाम क्या है? पंचम द्वीप का नाम क्या है? कोलब द्वीप का। षष्ठ द्वीप का नाम क्या है? ऋतु द्वीप। हर द्वीप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का हजार हजार लीला है। चैतन्य 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 भागवत, चैतन्य मंगल, भक्ति रत्नाकर आप लोग पढ़े, कितना अनंत से अनंत मुख में, मुंह में उसको वर्णन समाप्त कर रहता है, इतना लीला है। और चैतन्य लीला इतना मधुर है, इतना मधुर है, बोलते हैं गौरांग मधुर लीला जार कब ने प्रवेश लीला हृदय अलिन मेला भरता। जस्ट बाय अलाइन सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का लीला को हम लोग कर्ण माध्यम में श्रवण करेंगे, अंदर में बैठेगा, हृदय परिष्कार हो जाएगा। चैतन्य भागवत में बताया है, चैतन्य महाप्रभु का लीला इतना सुंदर है, इतना कोमल है, कोई सुनेगा तो पत्थर भी गिर जाता है, जितना हार हाते लोग होने से, असुर होने से भी उनका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। और हम लोग देखते हैं ना, जब बाहर के लोग आते हैं, जो नास्तिक होता है ना, मात्र धर्म का विशेष महत्व होता है, इधर आते ही मतलब हृदय परिवर्तन हो जाता है। मैं देखता हूँ, हमारा वो उस कृष्ण का जो भक्त लोग आता है ना, तो पितामह तो बहुत अपोज करता है, प्रतिबंध होता है, और कभी एक बार पितामह ले आता है इधर, तो अब जाकर उनका मन परिवर्तन हो जाता है। जय समी धाम की औदार्य धाम होता है। तो ऋतु द्वीप के बाद जानू द्वीप होता है। कितना नंबर द्वीप जानू द्वीप? सातवां नंबर। जानू मन इधर तपस्या करते थे। जब भागीरथी गंगा को लेकर आते थे ना, शंख बजाते हुए जाते थे, तो गंगा देवी पीछे पीछे आते थे, तो भागीरथी शंख बजाते हुए जाते जाते थे, तो एक बार भागीरथी पीछे देखे तो गंगा भागते नहीं, रो गए, तो भागीरथी फिर वापस आए, क्या हुआ? भागीरथी राजा ने, आप क्यों जाते नहीं? अरे हमारा वंशज तो समुन्द्र बहुत दूर जाने, 100 किलोमीटर जाने पड़ेगा। तो गंगा देवी क्या बताया मालूम है? नगरा देवी ने बताया, देखो और एक महीने के बाद इधर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होगा, तो फेस्टिवल आप बड़ा फेस्टिवल है गंगानगर, अभी भी है गंगानगर है, आजकल गंगानगर बोलते हैं। और जब फिर निकलना शुरू किया ना, गंगा इतना जोर से बातें की, जब सेना को जगह पर ओडिशी जानवी तपस्या करते थे, तो जानवी का लोटा कम्बल सब पानी लेके चला गया है। तो जानवी में जब आसन बने तो बहुत गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, जब कितना सक्षम ऋषि थे, हाँ वो इतना जोर शक्ति था ना, गंगा का सब पानी को पी ले, मंत्र में क्या दशा हुआ था। तो भगवत कैसा बहुत समस्या आता था, तो भगत फिर तपस्या करके जानवी को खुश कर किए, तो फिर गंगा को वापस दे दो, नहीं तो हमारा पूर्व वंश कैसे उधार पाएंगे। तो गंगा कैसे वापस दो, तो पान कर लिए, फिर मुख से निकालेंगे झूठा बन जाएंगे, तो कैसा होगा? तो कोई खातून लगाए और कान से भी निकाले, कोई तरह भाई जानू, एक जंगल को जानू बोलते हैं, इसको काट के निकाले, इसीलिए इधर से गंगा को जानू मंदिर कन्या, जानू मंदिर का कन्या बन गई, उनका जानना नहीं हो गया। और जानू मंदिर का आश्रम आप लोग जानने को, जानू मंदिर का आश्रम था, इसलिए वो आईलैंड को जानू द्वीप बोलते हैं। ऋषु द्वीप के बाद पहला द्वीप का नाम क्या है? दूसरा द्वीप का नाम क्या है? तीसरा द्वीप का नाम क्या है? चौथा द्वीप का नाम क्या है? ना अवेशन है। माता जी पहला जिसका नाम बताएंगे, फिर माता जी क्या है का नाम, पिताजी क्या आपको दूसरा देव का नाम, तीसरा देव का नाम, चौथा देव का नाम, आप पंचम दिव से का क्या, सोलह देव, सिक्स सेवन जानू देव, अच्छा फिर एक अष्टम आयुर्वेद के नाम मोटर द्रुमा देव, द्रुमा का मतलब मालूम है ना, और एक देव का नाम द्रुम था मालूम है, कौन सा देव का नाम द्रुम है, गोद द्रुमगर पे, तो तृतीय दिन में कृष्ण रामचंद्र आयकर लक्षण और सीता को लेके एक बहुत बड़ा पेड़ था इस आइलैंड में, तो पेड़ के नीचे रामचंद्र बैठे, सीता देवी सामने बैठे थे, रामचंद्र नवद्वीप का सुंदर स्वभाव दर्शन करके बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंदित होते थे, तो रामचंद्र ने बैठ के ऐसा मुस्कुराते थे, मुस्कुराते थे, तो सीता जी ने बताया तुम क्यों से मुस्कुराते हो, वो कारण नहीं ऐसा हंसते रहते हो, क्यों हंसते हो, तो राम ने कहे मैं इसलिए हंसता हूँ इस धाम पर हम लोग का फिर आविर्भाव होगा, ये कलयुग में मैं इधर चैतन्य रूप में आऊंगा, आओ उस समय मैं जब इस अभी जब हम लोग जंगल में भट मैं जंगल में भटक रहता हूँ घूमता हूँ ना, तब मैं भी सन्यास लेकर देव दशांतर में घूमते रहूंगा, मैं सन्यास ले लूंगा, मेरा पत्नी और मैं मेरा माँ मेरे लिए रोते रहेंगे, तो सीता जी ने बोला भाई तुम सन्यास ले लेंगे तो क्यों शादी करेंगे, तो शादी नहीं करना चाहेंगे, तो रामचंद्र ने फिर उसको समझाए क्यों मैं सन्यास ले जाऊंगा, क्यों मैं भक्त से कभी कभी दूर चले जाता हूँ, क्यों भगवान का जो प्यार करने का दो तरीका प्यार होता है, एक संभव होता है और एक दुर्लभ होता है, जो भगवान को पास में प्राप्त होता है भक्त तो भगवान को प्रत्यक्ष सदा करके बहुत आनंद प्राप्त होता है, जब भगवान दूर चले जाता है तो भक्त भगवान का साथ भगवान का चिंतन करके और भगवान का घनिष्ठ हो जाता है, इसीलिए भगवान ने बोला देखो अरे प्रेमी भक्ति भक्तों का पास में कभी दूर चले जाता हूँ तो विरह भाव उनका मन में आता है, जिसको विरह या विप्रलम बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण भगवान राधा रानी को भाव को लेकर आए, और राधा रानी के भाव में श्रेष्ठ भाव क्या होता है, विरह या विप्रलम का भाव होता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हर समय कृष्ण भाव में भावित होके राधा भाव में भावित होके राधा ने देखा मेरा कृष्ण किधर है, कृष्ण कैसा मिलोगे, कृष्ण ऐसा भाव हो जाता है, कहाँ जाबो कहाँ पाबो मुरली बदन, ऐसा महापुर का भाव था कृष्ण विरह में, भक्त भगवान कृष्ण और निकट में आ जाते हैं, उनका प्रेम और बढ़ जाता है, तो फिलोसफी का रामचंद्र ने शिवप्रभु को बताए और ये भी बताए इस जन्म में मैं तुम्हारा स्वर्ण मूर्त बनाकर पूजा करूंगा, अब मैं जब चैतन्य रूप में आऊंगा तुम मेरा स्वर्ण रूप लेकर तुम मेरा पूजा करेंगे, आप लोग मालूम है ना, तो सीता को रामचंद्र त्याग कर दिए फिर यज्ञ करने के लिए पड़ा, तब तो सीता नहीं होने से यज्ञ कैसे होगा, स्त्री चाहिए ना अर्धांगिनी, तो सोना का सीता बनाए थे, तो एक डिटेल बताया नहीं रामचंद्र, सिर्फ बोले इस जन्म में तुम मेरा मैं तुम्हारा स्वर्ण रूप का पूजा करूंगा, सदा चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर चले गए, विष्णु प्रिया है ऐसा महाप्रभु का रूप बना के वो पूजा करते थे, विष्णु प्रिया का तब उम्र था 16 साल, चैतन्य महाप्रभु का 20 साल उम्र में सन्यास लेकर चले गए, 48 ईयर उनका लीला समाप्त हो गया खत्म हो गया, तो महापुरुष का त्याग के बारे में हर दुनिया में बहुत प्रशंसा करते हैं, दुनिया को उद्धार करने के लिए महापुरुष कितना ना त्याग किए, सिर्फ विष्णु प्रिया का त्याग के बारे में किसी को मालूम नहीं होता है, तो हम लोग चर्चा करें विष्णु प्रिया का त्याग इस जगत का उद्धार के लिए महापुरुष का त्याग से और कोटि गुण ज्यादा था, देखो महापुरुष का सब छोड़ कर चला गया उनको दुख नहीं था, वो तो कीर्तन करते थे आनंद करते थे मौज करते थे आनंद में रह गए, लेकिन 16 ईयर उम्र का लड़की को घर में छोड़ के चला गया, कितना साल तक वो लीला करते मालूम है घर के पास विष्णु प्रिया 96 ईयर 96 ईयर्स तो अंतर्धान लागे तब मैंने 80 साल एक गौरांग महाप्रभु का बिरह में रहते थे, चिंता करके देखिए कितना त्याग उनके साथ। 80 साल गौरांग महाप्रभु मूर्ति बना के तो क्या खाते थे मालूम है? तो भगवान का नाम करते थे, एक बार का एक भगवान का नाम ले गए एक चावल रखें गए, फिर भगवान का नाम ले गए एक चावल रखें गए, उतना में जितना भगवान का नाम ले गए उतना चावल लेकर पकाएंगे और महाप्रभु भक्त करके उतना ही खाएंगे। देखे कैसा विरह भाव में रहते थे, तो विष्णु का कितना त्याग था, कितना त्याग था जगत वासी को उद्धार करने के लिए। तो रामचंद्र ने सीता को चिन्ह से भी बताया कभी जो भक्त में विरह भाव प्रदान कर लेता करता हूँ। तो जो मोदक ध्रुव, मोदक का मतलब आनंद, मोदक मतलब आनंद, तो वो ध्रुव वो पेड़ के नीचे बैठे रामचंद्र को बहुत आनंद मिला, इसीलिए वो द्वीप का नाम हो गया मोदक ध्रुव द्वीप। क्या है सब द्वीप का नाम भाई होगा? तो ठीक है, माता जी लोग बताए पहला द्वीप का नाम क्या है, कौन जोर में बोल पाता है वो अच्छा मालूम होता है। ठीक है, ज्यादा माता जी का मालूम होगा तो बच्चे का मालूम होता है। दूसरा द्वीप का नाम क्या है, तीसरा द्वीप का नाम क्या है, चौथा द्वीप का नाम क्या है, पंचम द्वीप का नाम क्या है, षष्ठ द्वीप का नाम क्या है, सप्तम द्वीप का नाम क्या है, जानवर द्वीप, अष्टम द्वीप का नाम क्या है। सामने जो बैठे कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है पीछे वाला बोलेगा, बैक बैक वाला बोलेगा। पहला द्वीप का नाम क्या है, अगले वाला नहीं बोलना। दूसरा द्वीप का नाम क्या है, तो क्या वो अंतर नहीं है, अंतर क्या बोलते हैं मालूम नहीं पड़ता। तो नाइन खाए जाए नवम द्वीप का नाम है रुद्र द्वीप, रुद्र उसे रुद्र भगवान एकादश रुद्र आकर तपस्या करते थे, नील रुद्र रूप में भगवान रुद्र भी है। जो शंकराचार्य भी आए थे, शंकराचार्य मालूम है ना क्या प्रकार के शंकराचार्य, तो मायावत प्रकार के थे ना। तो रामानुजाचार्य निम्बा सब आए, सब देवता लोग आए, सब भगवान से तुम दर्शन मिला। फिर शंकराचार्य भी आए तो महाप्रभु दर्शन दिए उसको, लेकिन शंकराचार्य बताए शंकराचार्य तुम इधर से भागो, तुम्हारे घर पार नहीं है, इधर हो भक्तराज्य। तो मायावत पूजा करता है तो मायावादी कृष्ण अपराधी, तो महाप्रभु मायावत देख नहीं पाते थे। महाप्रभु बता तुम मायावत देखेंगे तो समस्त गंगा में नहाने पड़ेगा तुमको। तो शंकराचार्य का फिलोसफी मायावादी फिलोसफी था। इधर शंकर जब आए तो रामानुजाचार्य निम्बार्क का विष्णु सभी सबको दर्शन करके आशीर्वाद किए, तुम इधर रहो इधर आओ, तो शंकर का दर्शन किए मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ, लेकिन तुम इधर से भागो, तुम नरक में रहकर जाएंगे। इसीलिए वृंदावन अब जाएंगे, वृंदावन में पंचवर्षीय परिक्रमा होता है ना, वो शंकराचार्य का फलो रखे वो लोग ने सोचते थे अंदर में लोग मंदिर बनाएंगे, तो ब्रजवासियों ने बताया तुम आया बजो इधर में पंचवर्षीय का बाहर तुमका मंदिर होगा, तो उन्होंने दूसरे नहीं किए। तो महाप्रभु बोले तुम एक काम करो तुम जाओ, शंकराचार्य तो शिव भगवान कृष्ण का निर्देश प्राप्त होता है, तुम जाकर लोगों को मत विमुखान करो, मेरा निराकर मत प्रचार करो। तो जो लोगों का स्वभाव ऐसा होता है वो लोगों ने एक ग्रुप होकर दूर में रहेंगे, मेरा भक्त लोगों का डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर तुम बाहर रहो। तो उसका उद्गम रुद्रद्वीप होता है। एक द्वीप है जो गंगा का पश्चिम पर है और पूर्व दिशा में भी है, ये नदी इधर उधर होता है ना, इसलिए एक द्वीप है, कुछ अंश गंगा का पूर्व दिशा में होता है कुछ अंश पश्चिम दिशा में होता है। ऐसा नवद्वीप का वर्णन किया गया, नवद्वीप में भगवान का अनंत लीला है, काबला का आए हुए बहुत भगवान है, बहुत भाग्य के कारण लोगों को धाम मनोवद्वीप धाम आने का मौका मिलता है। तो आप लोग इधर रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे जैसे आप लोग का व्यवस्था सब अच्छा से रहेगा, कुछ भूल हो जाएगा तो आप लोग क्षमा कर लेंगे, यहाँ से आनंद में रह के यहाँ चैतन्य लीला का बन करके आप लोग फिर वापस जाए। जय चैतन्य महाप्रभु के, जय नवद्वीप धाम के, जय गौर सीतानाथ।